पिछले अध्याय में आपने देखा कि अयान और सानवी के बीच बातचीत हुई। इस अध्याय में ज़ोया को अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़े खालीपन के बारे में बताते हुए अयान के साथ उसकी तनावपूर्ण बातचीत होती है। अयान माफ़ी मांगता है और स्वीकार करता है कि उसने उसे दुख पहुंचाया है। ज़ोया का गुस्सा कम हो जाता है और अयान से मिलने के बाद वो समझती है कि अयान बदल गया है। दोनों के बीच एक समझ विकसित होती है। अंत में ज़ोया कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती है और अयान को बताती है कि वो उसके साथ एक सच्चा जीवन जीना चाहती है, जिसके बाद वे चुंबन करते हैं। कृति सुबह सानवी से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि उसकी दीदी उससे बहुत नाराज है, इसलिए उसने तय किया कि आज वो चुपचाप घर से निकल जाएगी, बिना किसी से कुछ कहे सीधे ऑफिस के लिए। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली ही थी कि सानवी की आवाज ने उसे रोक दिया। सानवी उस वक्त डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। जैसे ही उसकी नज़र कृति पर पड़ी, उसके चेहरे पर नाराज़गी और दर्द दोनों साफ छलक गए। सानवी, तीखे स्वर में, हाँ चली जाओ, अब तो मुझसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं रह गई है। आखिर मैं लगती ही क्या हूँ तुम्हारी, कोई पराई ही सही समझ लो। कृति कुछ क्षण के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में ग्लानि और डर दोनों थे। दीदी प्लीज़, आप मुझसे नाराज़ मत होइए, मैं चाहती हूँ सब ठीक हो जाए। सानवी ने गहरी सांस ली और उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन स्वर में अब भी कड़वाहट थी। कृति, मम्मी पापा ने तुझे मेरे भरोसे भेजा था, कहा था कि मैं तेरी देखभाल करूंगी। मैंने वो जिम्मेदारी निभाई भी। मैं सिर्फ तेरी बड़ी बहन नहीं रही, मैं तेरी माँ बनकर जिया हूँ। तेरे लिए हर सुबह खाना बनाया, तेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखा, तुझे कभी भूखा नहीं रहने दिया। जब पैसों की कमी पड़ी, मैंने खुद काम किया ताकि तू आराम से पढ़ सके। तेरी पढ़ाई, तेरे खर्चे सब मैंने उठाए। और अब तूने वही किया जो मेरी रूह तक को हिला गया। सानवी की आवाज़ कांपने लगी थी, आंसू अब उसके गालों पर उतर आए थे। टूटे स्वर में, तूने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा कृति, तूने बहुत से लोगों की ज़िंदगी उलट पुलट कर रख दी। वो बच्चा जिसकी माँ बाप नहीं थे, जिसके सिर पर कोई साया नहीं था, तूने उसके साथ क्या किया? तू ऐसा कैसे कर सकती थी? क्यों? कृति की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे सानवी के पास आई और उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे खुद नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी, मैं सच में पछता रही हूँ। आपने हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया और मैंने ही आपको शर्मिंदा किया, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी, वादा करती हूँ। सानवी ने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखों में दर्द था लेकिन गुस्सा अब उतना नहीं बचा था, बस एक थकान, एक टूटन बाकी थी। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, माफ़ी से सब ठीक नहीं होता कृति, कभी कभी कुछ गलतियाँ इतनी गहरी चोट देती हैं कि वक्त भी उन्हें भर नहीं पाता। तू मेरी बहन है, इसलिए मैं तुझसे नफरत नहीं कर सकती, लेकिन आज तूने मुझे अंदर से बहुत अकेला कर दिया है। सानवी ये कहकर चुप हो गई। कृति सिर झुकाए वहीं बैठी रही। दोनों के बीच सिर्फ सन्नाटा रह गया, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें प्यार, दर्द और टूटे भरोसे की गूंज थी। कृति रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि इतना सब हो जाएगा दीदी, बस हो गया, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सानवी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें अब केवल गुस्सा नहीं, गहरी निराशा भी थी। और क्या तुम्हें लगता है कि ये सब ऐसे ही ठीक हो जाएगा? उसने कड़े स्वर में कहा। कृति ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन सच्चे पछतावे से भरी। मैं जानती हूँ, जो मैंने खराब किया है उसे अब सही नहीं कर सकती, मगर मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, सचमुच बहुत पछता रही हूँ। मैं बस एक मौका चाहती हूँ कि सब ठीक कर सकूँ। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और सानवी के गले लग गई। सानवी ने पहले तो खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसकी बाहें अपनी छोटी बहन के चारों ओर कस गईं। आखिर कृति उसकी गलती करने वाली बहन थी, पर वही बहन थी जिसे वो बेहद प्यार करती थी। कुछ पल दोनों चुप रहीं, बस रोने की हल्की आवाज़ें कमरे में गूंज रही थीं। फिर कृति ने रुक रुक कर कहा, दीदी जब आपने आर्यन को कुछ बताया ही नहीं, तो फिर आप वापस इतनी देर से क्यों आईं? मुझे नहीं पता आप रात कब लौटी, क्या हुआ आप दोनों के बीच, आपने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। सानवी ने उसकी ओर देखा और एक पल को उसकी आंखें भीग गईं, मगर अगले ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। उसका चेहरा अब ठंडा और सख्त था। सीधा काम पर जाओ कृति, उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, कुछ नहीं है हमारे बीच। कृति ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन सानवी ने नज़रें फेर लीं। राजवंश ग्रुप के ऑफिस के मीटिंग हॉल में माहौल गंभीर था। लंबी ओवल टेबल पर पहले से बैठे थे आर्यन राजवंश, शिव मेहता, देव, आर्यन का असिस्टेंट और इंद्र। सभी के सामने फाइलें खुली थीं। स्क्रीन पर कुछ चार्ट्स और आंकड़े दिख रहे थे। बाहर से आने वाली हल्की रोशनी कमरे की ठंडक में और निखार डाल रही थी। देव ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। सर, बस 2 मिनट में बाकी लोग भी आ रहे हैं, उसने कहा। तभी दरवाजा खुला। कमरे में प्रवेश किया विक्रांत मल्होत्रा और उसके साथी जैसिता, जो आज पूरे आत्मविश्वास और क्लास से भरी हुई दिख रही थी। उसका पेशेवर लुक सबकी नजरों को एक पल के लिए अपनी तरफ खींच लाया। देव, आप लोगों का ही इंतजार था, अब मीटिंग शुरू करते हैं। आर्यन ने धीरे से अपनी कुर्सी पर टेक लगाई। उसकी नजरें विक्रांत पर टिकी थीं। कमरे में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आर्यन ने ठंडे लेकिन अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, मीटिंग शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। आपके पास जय राठौर के 25% शेयर हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। बाकी 50% मेरे पास है और 25% इंद्र के पास है। विक्रांत ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था, जैसे वो अपने इरादे जाहिर नहीं करना चाहता हो। आर्यन ने बात खत्म करते हुए कहा, अब और वक्त बर्बाद नहीं करते, देव प्रेजेंटेशन शुरू करो। देव ने फाइलें स्क्रीन पर डाल दी और मीटिंग का माहौल तुरंत तकनीकी हो गया। लेकिन टेबल के नीचे चल रहा था शक्ति, भरोसे और धोखे का एक अदृश्य। ज्योति ऑफिस जा चुकी थी। फ्लैट में अब सिर्फ सानवी और रिया थी। कमरे में हल्की कॉफी की महक थी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी। रिया ने सानवी की तरफ देखा और कहा, तो तुम्हारा फैसला क्या है? तुमने सोच लिया है कि तुम अब आर्यन राजवंश के सामने नहीं जाओगी? लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन होगा, तुम तो उसके घर में काम करती हो। सानवी ने गहली सांस ली। उसके चेहरे पर थकान और एक शांत दृढ़ता दोनों थीं। देखो रिया, मैंने सोच लिया है, अब मेरी रेगुलर क्लासेस तो रही नहीं, बस वर्कशॉप चल रही हैं, तो मैं वही टाइम मैनेज कर लूंगी। मैं आर्यन के घर उस वक्त जाऊंगी जब मुझे पता होगा कि वो ऑफिस में होगा और जल्दी लौटाऊंगी। इस तरह हमारा आमना सामना ही नहीं होगा। रिया ने हैरानी से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो सानवी? सब कुछ जानते हुए कि उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, फिर भी तुम उससे भाग रही हो? सानवी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने हल्की मुस्कान दी जो ज्यादा दर्द भरी थी बनिस्बत किसी सुकून के। क्योंकि वो भी खतरनाक है और मैं भी, उसने धीमे स्वर में कहा। हम दोनों का मिलना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए यही अच्छा है कि हम दोनों दूर रहें। उसकी आंखों में नींद की कमी और दिल में उथल पुथल साफ छलक रही थी। रिया ने थोड़ा झुककर पूछा, तुम उसे रात सच्चाई बताने गई थी ना, फिर आखिर बताया क्यों नहीं? सानवी ने नजरें झुका ली। क्योंकि मैंने गलती से ड्रिंक पी ली थी, उसने धीरे से कहा। बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं और मैं वहीं सो गई थी। रिया चुप हो गई, मगर उसके चेहरे पर संदेह साफ था। वो समझ गई थी कि सानवी कुछ छिपा रही है।
सानवी ने आगे कुछ नहीं कहा।